Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आपके पास टिकट है, ट्रेन में बैठो और जैसे ही आपका स्टेशन आ गया और फर्स्ट क्लास एसी में बहुत आराम मिल रहा है, बाहर बहुत गर्मी है और स्टेशन आ गया और स्टेशन मास्टर को आप बोलो कि भैया और एक दो स्टेशन आगे जाऊं क्या, अरे बहुत गर्मी है यहां नहीं उतरे, बोलेगा नहीं नहीं आप सीट छोड़ दीजिए दूसरे के लिए। तो ये दुनिया की जितनी भी चीजें हैं ना, एक संसार का हिस्सा है और इसीलिए उसको प्राप्त करने के बाद छोड़ना पड़ता है। कितना भी उच्चतम ये शरीर मिले तो भी इसको छोड़ना पड़ता है। बहुत सुंदर से सुंदर मकान बने आपके, हाँ, और उसको भी
छोड़ना
पड़ता है। एक जगह बिरला जी ने कहीं लिखा हुआ, अरे बोले मैंने बहुत सारी दुनिया देखी, अरबों खरबों रुपए देखे, सारी सुविधाएं देखी, लेकिन बोले सब वो हवा में उड़ने वाले रुई की तरह है। उन्होंने उदाहरण दिया है हवा में उड़ने वाले रुई की तरह। एक रुई होती है, एक पेड़ होता है वो, और वो फल जैसे खुलता है ना, वो पकने के बाद सूख जाता है, खुल जाता है, और जैसे खुलता है उसका बीज जमीन में नहीं गिरता है, वो हवा में उड़ जाता है, इतना हल्का होता है। तो बोले ये रूप, ये सौंदर्य, ये सारी चीजें जो है ना हवा में फुर हो जाती हैं। ये शरीर कितना सुंदर, आहा जवानी में टनाटन उड़ गया। बहुत सारी चीजें हमारे पास थी, वो हवा में उड़ गई, ये जवानी उड़ गई, ये सब कुछ उड़ गया। ये क्या है, स्थायीता यहां कुछ भी नहीं है, इसलिए ये परम गति नहीं है। इसका पाना एक जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन ये परम गति नहीं है। जो परम गति है वो पाने के बाद कभी आदमी खोता नहीं है, और जो चीज पाने के बाद खो जाती है वो हमारा रूप नहीं है, वो परम गति नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिसको प्राप्त करने के बाद आपके पास वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाती हैं, वो चीज परम गति है, वही सत्य। आपने एक बार अपने आप को जान लिया तो फिर आत्म तत्व को प्राप्त होने के बाद पुनः संसार को प्राप्त नहीं होंगे आप। इसलिए बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु परमांगति, वो परम गति है, परम गति है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणम, अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही भवाप्य। और उस परम गति में स्थित होने का इनाम योग है। ये हमारी जो बुद्धि है ना, तत्व को जान लेती है, पहले तत्व को जान लेना चाहिए और वो बात निष्ठा में आए कि ना आए पहले तो सुनना है, और सुनने के बाद उसको जान लेना है, जानने के बाद निष्ठा में बदल देना है। पहले आप सुने, बहुत सारी चीजें सुनने के बाद भी समझ में नहीं आती हैं, बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, ओहो महाराज समझ तो गए ऐसा बोलते हैं, ओहो समझ तो गए, लेकिन अभी ये निष्ठा नहीं बन रही है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, ये बात तो समझ गई लेकिन अभी ये निष्ठा नहीं बनी है। तो बोले इसको निष्ठा में बदलना है, निष्ठा में बदलना है धीरे धीरे। ये जो निष्ठाएं जो है ना, ये अभ्यास से बनती हैं। जो दृढ़ स्थिति अदृढ़म हतम ज्ञानम, प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो हतो मंत्रः, व्यग्र चित्तो हतो जपः, हमारा ज्ञान यदि दृढ़ नहीं है ना तो वो भूल जाता है, मिट जाता है। और दृढ़ ज्ञान हो तो अरे वो तो कभी नहीं भूलता है। दृढ़ ज्ञान ही तो निष्ठा है, और इस निष्ठा को प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः श्रवण मनन अभ्यास है ना, पुनः पुनः जो अभ्यास है वो हमें निष्ठा में ले जाता है। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की जो धारणा है उस तत्व के संदर्भ में निश्चयात्मक जो बोध है वही योग है आत्मस्थिति में। इसलिए आदमी को अभ्यास करते रहना चाहिए, ये शरीर नश्वर है और इस शरीर से परे आत्मा मैं हूं, और ये जान के शोक से मुक्त हो जाना चाहिए। सत्य को जान लेने के बाद शोक को छोड़ देना चाहिए, जन्म और मृत्यु की चिंता से परे हो जाना चाहिए। जन्म और मृत्यु से परे, इस शरीर से परे जो आत्म तत्व है वो मैं हूं, आत्मा मैं हूं, इसका चिंतन करना चाहिए। आप बैठ जाएं और बैठ करके आप चिंतन करें मैं आत्मा हूं, ये शरीर नश्वर है, ये परिवर्तनशील है और इसको देखने वाला हूं मैं। एक महात्मा थे अपने आश्रम में, बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्हीं के कारण मैं अपने अखंडानंद आश्रम में आया, वही ले आए थे पूज्य स्वामी श्री वामदेव जी महाराज। वो एक बात बड़ी मजेदार सुनाते थे, वो सुनाते थे बड़े विरक्त साधु थे, विरक्त मंडलियां 50-100 साधु जिसके मंडली में, और वो गंगा के किनारे बैठ जाते कहीं एकांत में, और एकांत में बैठ के वेदांत का चिंतन कर, वेदांत का ध्यान करते थे। वेदांती को वेदांत का ध्यान करना चाहिए, वेदांती को वेदांत का प्राणायाम करना चाहिए। मधुबाबू जी, वेदांती को वेदांत का प्राणायाम करना चाहिए, वेदांती को वेदांत का ध्यान करना चाहिए, वेदांती को वेदांत की योग साधना करनी चाहिए, आसन करना चाहिए। तो ये वेदांत की प्रणाली क्या है, वेदांत का ध्यान, वेदांत का प्राणायाम, वेदांत के आसन क्या है? वो तो जो करते हैं वही करो। आप आसन करते रहे ना, आसन करते रहे, और उस समय ये सोचे ये शरीर मेरे से अलग है। आप आसन करते समय अंदर से ये भाव जगाए कि इन आसनों से मैं परे हूं। जो आसन करते हो शरीर ज्यादा मालूम पड़ता है, हाथ पैर आप हिलाओगे तो आपने को मालूम पड़ेगा ये शरीर है, और वो हाथ पैर हिलाते समय और अंदर से वेदांत की साधना आरंभ करते, इस शरीर से मैं परे हूं, और बैठ के प्राणायाम करो। हाँ, रामदेव बाबा का भस्त्रिका, और उस समय आप अंदर से करते समय भी अनुभव करो इस प्राण से मैं अलग हूं। प्राणों को लंबे खींचो और करते समय अंदर से जगाओ अपनी चेतना, इस प्राणों से भी मैं परे हूं। लेकिन करना चाहिए, प्राणायाम करो, और प्राणायाम करते समय अपने को उससे अलग समझो। और ध्यान क्या है? ध्यान यही है, फिर आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, फिर आंख बंद करके बैठो और बैठकर अपने चित्त को स्थिर करो, मैं इससे अलग हूं। अपने मन को आंख से निकालो, कान से निकालो, त्वचेन्द्रिय से निकालो, अन्य अन्य इंद्रियों से उसको हटा दे, और हटा करके अपने हृदय में ले आए अहम। ओहो, मैं अहम हूं, ये आंख है और यहां मैं हूं, हृदय हृदय देश में जो अहम स्फुरणा है वो मैं हूं, और मैं शरीर से अलग हूं, मैं हृदय देश में हूं, चिन्मय उसी तत्व का हिस्सा, तद्रूप ब्रह्म तत्व मैं हूं आत्मा, और शरीर से मैं परे हूं। ये जो आपका जानना है ना, यही ये तत्व चिंतना, यही आपकी समाधि है, यही वेदांत का ध्यान। और इसी वेदांत के ध्यान को आप क्या बोलते हो? निधिध्यासन बोलते हो। ये ध्यासन यही है, मैं प्राणों से परे, मैं इंद्रियों से परे। आप एक गाना गाते हो ना, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निरभि, गाना है वो, ये वेदांत का गीत है, ये वेदांत का संस्कृत का गीत नहीं, मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाह। और अंत में क्या बोलते हैं, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये आदमी को चिंतन करते रहना चाहिए, यही योग धारणा है। और धीरे 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 फिर आपके मन की स्थिर अवस्था प्राप्त होगी, निष्ठा प्राप्त होगी। और इस अभ्यास में अप्रमत्तः तदा भवती हो, प्रमाद नहीं करना चाहिए। हम लोग बहुत प्रमादी हैं, हम लोग बहुत प्रमाद करते हैं, दवा खाने में प्रमाद, तो रोग बढ़ेगा। आपको डॉक्टर ने बोला कि भैया ये दवा खाओ, सुबह एक गोली खाओ, शाम को एक गोली खाओ, और आप नियमित खा रहे हैं, इसका मतलब प्रमाद नहीं कर रहे हैं। और किसी दिन खाए और किसी दिन नहीं खाए, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर फिर दुख रहा है, तो आपने प्रमाद किया ना। आपको डॉक्टर ने बोला कि भैया ये थोड़ा थोड़ा खाओ भोजन, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको 10 बार खाना है, थोड़ा खाना है, और चलो 10 बार खाएंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, अरे एक ही बार क्या दोबारा नहीं मिलेगा क्या? ये जल्दी जल्दी शीघ्रतापूर्वक खाने की जो आदत हमको लगी है ना, वो बहुत पुराने जमाने की आदत है, इसको छोड़ना चाहिए। आपने कभी देखा होगा गाय भैंस जब चरती है ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी चरती है, उसको मालूम है कि पता नहीं खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई शेर आ गया भागना पड़े, शेर आ गया खा गया, और दूसरा जानवर आके चर जाए, तो नेचर ने उसके अंदर एक आदत डाल दी, जल्दी 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 खाओ। और उसके बाद फिर अपना गोठे में जाओ, पेड़ के नीचे बैठो, और बैठ के फिर जुगाली करो। हाँ, ये आदत लग गई जल्दी जल्दी खाने की, और एक ही बार खाने की आदत, क्या पता मिले ना मिले। पुराने जमाने में जंगल में जाता था आदमी, फल फ्रूट जमा करता था, वो खा लेता था। अभी आपको जंगल में जाके फल फ्रूट जुटाने हैं, आप जुटाने की जरूरत नहीं, घर में सब कुछ है, अब अभी अभी भी मिलेगा, और 5 मिनट बाद भी मिलेगा, 1 घंटे के बाद भी मिलेगा। अब आश्रमों में हमारे घंटी बजने तभी भोजन मिलता है, और वो घंटी से चुक गया तो अब प्रेमपुरी में तो मिल जाता है, ये लोग थाली रखते हैं, लेकिन जो मधुकरी वगैरह महात्मा लोग भिक्षा लेते हैं मधुकरियों में, अन्य क्षेत्रों में, वहां चुकने के बाद फिर दिन भर भूखा ही रहना पड़ता है, चुक गए आप, और वहां तो खाना ही पड़ेगा। ओहो, कई बार होता था कल तो एकादशी है, तो आज दशमी के दिन आदमी सोचता है कि कल एकादशी है, इसलिए आज ज्यादा खा लेना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन एकादशी के दिन भी आपको खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो दशमी के दिन क्यों इसको कोठार बनाओगे, इसको क्यों कीचड़ बना के रख रहे हैं? इसलिए संयम करो भाई, संयम करो। आप जब सुबह नाश्ता करते हो ना, तो दोपहर को याद रखो भोजन करना है। आप स्वस्थ रखना चाहते हैं अपने शरीर को, तो ये युक्ति अपनाओ। आप नाश्ते में बैठो तो आप दोपहर का भोजन याद रखो, ओहो दोपहर को हमको भोजन करना है, मिलेगा पक्का, दोपहर को पक्का भोजन मिलेगा आपको, मालूम है, याद रखो। तो आप सुबह का नाश्ता कम करो, और जब आप दोपहर का भोजन करते हो ना, तो उस समय शाम का भोजन याद रखो, ओ भाई शाम को करना है हमको, अब शाम को मिलने वाला है भोजन। लेकिन आदमी ऐसा प्रमाद कर जाता है कि सुबह का नाश्ता करते समय दोपहर का भोजन भूल जाता है, और ये मन भी बड़ा मजेदार, मन आपको समझाता है, अरे खा लो नाश्ता, खा लो पेट भर के नाश्ता खा लो, दोपहर को कम खा लेंगे, ये मन बोलता है दोपहर को कम खा लेंगे, अब नाश्ता ही कर लो। और जब दोपहर का भोजन करते हैं तो शाम का भोजन याद नहीं रहता है, मन बोलता है खा लो यार शाम को कम खा लेंगे, और जब शाम को जब भोजन के लिए बैठता है तो मन बोल देता है कि अरे खा लो, अब तो सोना ही है। इसी को तो प्रमाद बोलते हैं। ये प्रमाद आपके संयम को तोड़ देता है, आपके नियमों को तोड़ देता है, आपकी अंतर्मुक्तता समाप्त कर आपको भयमुक्तता में ले जाता है। इसलिए आदमी को प्रमाद ही नहीं होना चाहिए। आपको स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए प्रमाद न हो, अध्यात्म में प्रमाद न हो। माला जप करना है, ओहो नहीं, हम नहीं छोड़ सकते भैया, इसको कर लेना चाहिए। जैसे दवा की तरह, डॉक्टर ने नियमित दवा खाने के लिए बोला है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, नियमित आप दवा खाते हैं, वैसे नियमित आदमी को जप करना चाहिए। बैठकर आप नियमित रूप से जप कीजिए, धीरे धीरे दवाओं की तरह वो जप आपके मन को बहुत स्ट्रांग बनाएगा, वो अपने मन में आत्मविश्वास जगाएगा, वैराग्य ले आएगा, आत्मनिष्ठा में ले जाएगा। इसलिए अप्रमत्तः प्रमाद रहित होकर वो ज्ञानी योगी वो जीवन जीता है, वो निष्ठा में जीता है, वहां प्रमाद नहीं होता। इसलिए साधक के जीवन में प्रमाद न हो, योगो ही प्रभवाप्येयो। आपको योग में तो कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि योग ही तो आपके जीवन में बहुत कुछ देने वाली चीज है। योगो भवति दुखः, भगवान ने गीताजी में बोला योग, योग क्या है भैया? अरे बोले ये संपूर्ण दुखों को मिटाने वाली दवा है। आप अपने मन के दुखों से परे हो जाना चाहते हैं, आप योग करो। आप बुढ़ापे से दूर होना चाहते हो, योग करो। बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाना चाहते हो, योग करो। ये आपके शरीर का योग है, आप तैरते हैं, आप दौड़ते हैं, आप आसन करते हैं, ये शरीर का योग है। और ये शरीर का योग भी आपके आत्मयोग में कारण बन जाता है। घुटने में दर्द पैदा करके आप हाथ में माला लेके जब करना चाहते हैं, आप घुटना तो बेकार कर दिया और हाथ में माला लेके बैठ के जब करना चाहते हैं, होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, पहले शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। आप अपनी सही क्रियाओं के द्वारा योग के आश्रय से अपने शरीर को स्वस्थ बनाओ, और ये शरीर का स्वास्थ्य भोग में नहीं, योग में हेतु बनाओ, और उसके बाद ही शरीर का उपयोग करो। शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। आप जब अच्छे करेंगे, आप सत्संग में बैठेंगे तो आनंदपूर्ण बैठेंगे, आनंदपूर्ण बैठेंगे। इसलिए योग भवाप्ययो ही, योग जो है ना, ये पैदा करता है बहुत कुछ, ये हमारे जीवन में बहुत कुछ पैदा करता है। मनोबल, आत्मबल, शरीर बल, बुद्धि बल, ये संपूर्ण बलों का आश्रय हेतु आपका योग है। इसलिए योग का आश्रय लो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, अस्तीति ब्रुवतो न्यत्र कथम तदुपलभ्यते। नैव वाचा न मनसा, ये सत्य है कि आप वाणी से, मन से, बुद्धि से उसको प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अब धीरे 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 उस तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं तो वो तत्व आपको समझ में आ जाता है। यहां पर तत्व के बारे में आपको युक्ति बता दी, धीरे धीरे कैसे उसको समझा जाए। पहले आप जब श्रवण करते हैं ना तो मालूम पड़ता है कि ये है। जब हम वेदांत का श्रवण करने के पहले कुछ नहीं जानते थे, वेदांत के श्रवण के पहले तो यही मालूम पड़ता था कि कोई स्वर्ग है, कोई नरक है, कोई लोक लोकांतर है, वैकुंठ होगा, पता नहीं क्या क्या। और जैसे जैसे वेदांत का श्रवण करते गए तो मालूम होने लगो हो है, आत्मा है, ब्रह्म है, ये अस्तित्व बोध। पहले अपने अंदर अस्तित्व बोध जगाना चाहिए। ये अस्तित्व बोध जो है ना, ये परोक्ष ज्ञान है। अस्तित्व के आपको पहले जान लेना चाहिए वो है। आपने सुना किसी से या आपने ग्रंथों में पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ा वो है ना, और वो फिर है कि निष्ठा श्रद्धा आपको अस्मिता में ले जाएगी। अरे वो जो है ना वो तो मैं ही हूं, ऐसा पहले है का बोध और है के बोध के बाद निष्ठा साधना और फिर उस है के साथ आत्मा का जुड़कर बोध, जो है वो मैं हूं। अन्यत्र कथम उपलब्धते, वो और कहां से पैदा प्राप्त होगा, आपको कहां से मिलेगा, यही तो उपाय है, उसको जानने का यही उपाय है। पहले उसको परोक्ष रूप से जानो, ये चार प्रकार का ज्ञान होता है। एक ज्ञान है परोक्ष ज्ञान, दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान, तीसरा अपरोक्ष ज्ञान और चौथा साक्षात अपरोक्ष ज्ञान। आपने देखा नहीं केवल सुना है वो परोक्ष ज्ञान है। आप अभी हरिद्वार नहीं गए हैं, केवल सुने हैं, हरिद्वार है बहुत सुंदर है, आपने सुना वृंदावन बहुत सुंदर है, ये सुनकर के जो ज्ञान है ना वो परोक्ष ज्ञान है। अभी हम रामेश्वरम में भागवती कथा के लिए गए थे, सितंबर 27 सितंबर, ओहो कितना सुंदर है जगन्नाथपुरी। जो लोग नहीं गए उनके लिए तो परोक्ष ज्ञान है, सचमुच बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा लगता है कि हम किसी सतयुग में प्रवेश कर गए, ऐसा पवित्र स्थान। और 15 फरवरी से 22 फरवरी तक रामेश्वरम में भी कथा है, जिसको चलना है वो चल सकते, रामेश्वरम में भागवती कथा है 15 फरवरी से 22 फरवरी। आप रामेश्वरम गए नहीं, केवल सुना आपने, सुन के ज्ञान हो गया, तो ये जो ज्ञान है ना परोक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान वो आंख से परे है, अभी केवल आपने सुना, अपनी आंखों में नहीं आया है वो, और वहां पहुंचे वो दृष्टि का विषय हुआ और आपको मालूम पड़ने लगा वो ज्ञान अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान, वो ज्ञान आपका प्रत्यक्ष आंख से मालूम पड़ा, कान से मालूम पड़ा, त्वचा से मालूम पड़ा, रसना से मालूम पड़ा, नाक से मालूम पड़ा, पांचों इंद्रियों से आप उसको जानने लगे, ये प्रत्यक्ष है। और अपरोक्ष, वो अपरोक्ष जो है ना अपने आप को होता है, प्रत्यक्ष का विषय बहुत से लोगों के सामने होता है लेकिन अपरोक्ष केवल अपने को, जैसे आपके अंदर जो अपने को मालूम पड़ते हैं ना फीलिंग होती है, जैसे मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, हाँ मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं धर्मनिष्ठ हूं, मैं दयालु हूं, मैं दानी हूं, ये जो आपको ज्ञान है ना ये अपरोक्ष है, ये दूसरे को मालूम नहीं पड़ता है। आप कितने विरक्त हैं ये आपको ही मालूम पड़ेगा, आप कितने धर्मनिष्ठ हैं, ये धर्म जो है ना ये तन का भाव नहीं है, ये मन का भाव, अंतःकरण का धर्म है धर्म, और वो स्वसमेत नहीं है। केवल अपने को मालूम पड़ेगा कि आप कितने धार्मिक हैं, दूसरे को मालूम पड़ेगा हाँ, दूसरा तो केवल अनुमान करेगा कि हाँ ये दिखाई चीजें दे रही हैं इसलिए धर्मनिष्ठ हैं। तो अपने सुख दुख आदि भावों का जो आपको ज्ञान है ये अपरोक्ष, लेकिन मैं हूं ये जो ज्ञान है
साक्षात अपरोक्ष,
मैं हूं ये अपना स्वयं का जो बोध है ना वो साक्षात अपरोक्षम, इसलिए साक्षात अपरोक्ष केवल अपना ही बोध होता है। स्वाभिन्न जो आत्म तत्व उसका जो बोध है वो साक्षात अपरोक्ष है। हम जानते हैं मैं हूं ये साक्षात अपरोक्ष है, और आप जब यात्रा शुरू करते हैं ना तो वहां से शुरू करते हैं, परोक्ष से है है है, फिर वो धीरे 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 वो है वो साक्षात अपरोक्ष उसमें ले जाता है, फिर वो जो है वो और कोई नहीं वो तो मैं हूं। अब आप मैं के बोध में चले गए, इसलिए अस्ति इति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। वह है अस्ति अस्ति अस्ति, अरे यही अस्तिता आपको आत्मबोध में ले जाती है, और क्या उपाय हैं उसको जानने का, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। शनै शनै बुद्ध्या मुपर में भगवान का यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्ये तत्। भगवान ने छठवें अध्याय में बहुत सुंदर बात बोली, बोले जहां जहां भी मन है वहां वहां से मन हटाओ। भगवान ने बोला जहां जहां आपका मन है वहां वहां से मन को
हटाओ
हटाओ, और धीरे धीरे उस मन को अपने आत्मा में ले जाओ, और सत्य में ले जाके अपने मन को स्थिर करो। राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी महाराज को प्रश्न पूछा, भगवान म्रियमानस्य, ये सारी जो दुनिया है ये म्रियमान है, म्रियमान है मरणशील है, मरणशील माने मरना ही उसका स्वभाव है, जैसे मीठा मिश्री का धर्म है, खट्टा इमली का धर्म है, खट्टे को छोड़ के इमली नहीं रहती है, मीठे को छोड़ के मिश्री नहीं रहती है, ऐसे ये जो शरीर है ना ये मरने को छोड़ के नहीं रह सकता, ये म्रियमान है, ये मर रहा है और ये मरेगा, और उस सारी दुनिया ऐसे ही है। तो आप ये बताइए हमको क्या करना चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव जी महाराज, और प्रसन्न होकर सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमको जो चीज अच्छी लगती है, तुमको धर्म अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, भक्ति अच्छी लगती है, जप अच्छा लगता है क्या? अरे बोले तो आप अपने मन को जप में डाल दो। आपको ज्ञान की साधना अच्छी लगती है तो बोले ज्ञान में अपने मन को डाल दो, और निष्ठा में उसको बदल दो, निष्ठा में। जब मरने का समय आ जाए, मरने का समय कब आएगा?
कभी भी।
बोले मरने का समय नहीं नहीं, मरने का समय आएगा तब, ऐसा नहीं है, जान के भैया ये मरने का ही समय है। हाँ, ये जो समय है ये मरने का ही समय है, ऐसा जानकर। हाँ, जब आप ऑफिस में धन कमाओ तो उस समय ये मत सोचना कि मरना है। और जब माला लेके बैठो तो ये सोचना, अरे इसका क्या भरोसा, चलो
कभी भी मरना है,
चलो भैया अभी शरीर का क्या भरोसा, सुबह उठो बैठो ध्यान में बैठो, क्या भरोसा। इसलिए संसार को प्राप्त करना हो तो ऐसा सोचना है कि कभी मरेंगे नहीं, लेकिन वहां भी याद रखोगे तो सत्य होगा जीवन में, बेईमानी नहीं करोगे। लेकिन आपको जब ध्यान करते समय तो आपको समझना ही चाहिए ये तो नश्वर है और ये कभी भी मर सकता है, ऐसा सोच कर नारायण, ऐसा सोच कर। देखो हमारे पूज्य यहां के अध्यक्ष महोदय, मैं तो अध्यक्ष ही बोलता था, मेरे को हंसते हुए आके बोलते थे मैं अध्यक्ष नहीं हूं स्वामी जी। फिर मैं शब्द डाल देता था कार्यकारी, ऐसा बोल दे हंस जाते। पूरी भागवती कथा सुनी थी मधुबाबू जी, उस समय बैरागढ़ा वाली भागवत पूरी सुबह, और मेरे से पहले आके बैठ जाते। देखो अभी पिछले बार हम थे और पिछले बार हम बहुत प्रेम से मिलते, जब मैंने यात्रा 40-41 दिन की यात्रा की थी बहुत खुश थे। बोले क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या भेजू? बोले ट्रक भर के सामान भेज दू, ऐसा आप जो बोलोगे। आज एक महापुरुष इस संस्था को बहुत आगे बढ़ाया उन्होंने, बहुत सारी एक्टिविटीज हरि भाई ने इसको आगे बढ़ाया और डालमिया जी ने उसको और इसको सुशोभित किया, इसको और फैसिलिटीज दी, इसको और अन्य अन्य ऑप्शन में बदल दिया। इसको तो म्यूजियम बना, म्यूजियम बोले क्या बोलते हैं, खजाना बना दिया, अध्यात्म का खजाना बना दिया। पहले तो सत्संग ही होता था, अब तो यहां योग भी होता है, विपश्यना भी होती है, पता नहीं क्या क्या होता है, वो हमको भी मालूम नहीं है। ये तो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे और 2400 घंटे यहां बस कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यक्रम। वो बोलते भी थे हमने ये किया है महाराज, ठीक किया बनाओ। तो वो महापुरुष हम लोगों के मध्य में नहीं है अभी, यही इंद्रिय मानस है। इसलिए अपने को नारायण ये सारी चीजें देखकर वैराग्य धारण कर लेना चाहिए और अपने मन को आत्मनिष्ठा में ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। ओम नारायण।